कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा जनवल्लभा गिरिवरधारी राधा माधव कुंज विहारी Ram 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 Hare Hare
భాగవతం స్కంద దశ అధ్యాయ ఏక్ శ్లోక సంఖ్య 62 నందాదయ సర్వే వై దేవతా ప్రాయః ఉభయో అపి భారత జ్ఞాతయః బంధు సుహృదః యే చ కంసం అనువ్రతః सर्वे वै देवता प्रायाः सर्वे वै देवता प्रायाः सर्वे वै देवता प्रायाः उभयोरपि भारत उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये चाकं समनुव्रताः ये चाकं समनुव्रताः सर्वे वै देवता प्रायाः सर्वे वै देवता प्रायाः उभयोरपि भारत उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये चाकं समनुव्रताः ये चाकं समनुव्रताः सर्वे वै देवता प्रायाभारतयो एकाकं सम्मनुव्रताः सर्वे वै देवता प्रायाः सर्वे वै देवता प्रायाः उभयोरपि भारत
ख्यातयो बन्धुसुहृदो ये
ఏకాకం సంవను ప్రదాం
శబ్దార్థ ఇస్ ప్రకార్ హై सर्वे सभी वै निसंदेह देवता प्राय स्वर्ग के निवासी थे। उभयो नंद महाराजा तथा वसुदेव दोनों के अपि निसंदेह भारत हे महाराज परीक्षित ज्ञातयः संबंधिगण बंधु सारे मित्र सुहृदः शुभेच्छुजन ये जो च तथा कंसम कंसमनुव्रताः कंस के अनुयायी होते हुए अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइन रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चाय। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ महाराजा परीक्षित नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालिद तथा उनकी स्त्रियों स्वर्ग लोक की ही वासी हैं। इसकी इसी तरह वसुदेव आदि दृष्टिवंशी तथा देवकी वम देवकी एवं वसुदेव के देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्ग लोक की वासी थे। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र संबंधी शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति भी देवता ही थे। तात्पर्य जैसा पहले बतलाया जा चुका है भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से बतला दिया था कि धरती की कष्ट हरने के लिए कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे। भगवान ने स्वर्ग के समस्त निवासियों को आदेश दिया था कि वे यदु तथा वृष्टि वंश में विभिन्न परिवारों में तथा वृंदावन में जाकर जन्म लें। इस श्लोक में पता चलता है कि यदुवंश वृष्टि वंश नंद महाराज के सारे मित्र तथा गोप भगवान के लीलाओं को देखने के लिए स्वर्ग लोक से अवतरित हुए। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है भगवान की लीलाओं में भक्तों की रक्षा करना तथा असुरों का वध करना सम्मिलित रहता। मित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम इन लीलाओं में इन लीलाओं के प्रदर्शनार्थ भगवान ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में भक्तों को बुलाया। ऐसे अनेकों भक्त हैं जो स्वर्ग लोक को जाते हैं। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुचीनां श्रीमतां गेहं युगल पृष्ठो विजायते। भ्रष्ट योगी अनेक अनेक वर्षों तक पवित्र जीव के बीच में भोग करने के बाद पवित्र लोगों के परिवार में या किसी धनाढ्य व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। कुछ भक्त अपनी भक्ति के विफल हो जाने पर उस स्वर्ग लोक को भेजा जाते हैं जहाँ पुण्यात्मा जाते हैं और वहाँ पर भोग करने के बाद उन्हें उस स्थान को भेजा जा सकता है जहाँ भगवान की लीलाएँ हो रही हों। जब कृष्ण को अवतीर्ण होना था तो स्वर्ग निवासियों को भगवान की लीलाएं देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी लीलाएं यहाँ पर यह कहा गया है कि यदु तथा वृष्टिवंशी एवं वृंदावन के निवासी देवता थे या देवताओं के तुल्य थे। यहाँ तक कि कंस ने कंस के कार्यकलापों की ऊपर से सहायता करने वाले भी स्वर्गलोक के संबंधी थे। वसुदेव को बंदी बनाना और उसका छोड़ जाना तथा विविध असुरों का वध, ये सब भगवान की लीलाओं की अभिव्यक्तियाँ थी। और चूँकि भगवान इन लीलाओं को देखकर प्रसन्न होंगे, इसलिए उन्हें इन परिवारों के मित्रों तथा संबंधियों के रूप में जन्म लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुंती जी स्तुति करती हैं श्रीमद्भागवतम में पुष्टि की गई, कुंती की स्तुति में पुष्टि की गई है। नटो नाट्य धरो यथा, भगवान को असुर संहार की और अपने भक्तों के मित्र पुत्र तथा भाई के भूमिका आदि करने की, इसलिए भूमिका आदि करनी थी, इसलिए इन सारे भक्तों को बुलाया गया था। ओमज्ञानविरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपत्पदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। साठ, 61 और 62 ये तीन श्लोक को भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों श्लोकों का तात्पर्य नहीं है। आप सब जानते हैं कि जैसे नंद महाराज वसुदेव अपने पुत्र कीर्तिमान को लेके कंस के पास गया, तो कंस तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। वसुदेव की जो सत्य व्रत को देख के इनका इतना प्रसन्नता हुई। सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसं तुष्टमनाः राजन्। सत्ये चैव व्यवस्थितं, उनका चित्त सत्य में व्यवस्थित होने की वजह से उसको देख के कंसस् तुष्टमनाः, कंस बहुत प्रसन्न हुए, उनका मन संतुष्ट हुआ। और प्रहसन्निवाब्रवीत करती है, बहुत प्रसन्न होके। और एक आचार्य कहते बहुत हंसते हुए उन्होंने इस प्रकार बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? प्रतियातु कुमारोयम नहीं अस्माद अस्ति निभयम। प्रतियातु, आप लेके जाओ कुमारोयम, ये जो बच्चा है उसको लेके जाओ। नहीं अस्माद अस्ति में भयम, मेरे लिए ये जो बच्चा है इससे अस्ति भयम उससे भय नहीं है।
अष्टमाद युवयोर गर्भम मृत्युर्मे विहिता किला।
तो कंस कहता है कि वसुदेव ये तुम्हारा ये जो बच्चा है उससे मुझे कोई डर नहीं है।
अष्टमाद युवयोर गर्भम,
मुझे भय किसमें से है, आठवां गर्भ है उससे भय है। इसलिए मृत्यु और मैं विहिता किला, क्योंकि जब आकाशवाणी हुआ था मेरा मृत्यु जो है अष्टमा गर्भ है, आठवां गर्भ का गर्भ से है, तो इससे मेरा डर जो है आठवां गर्भ से है, इससे इसको लेके जाओ, ऐसा ने कहा। जैसे कंस ने इस प्रकार कहा तो आगे वसुदेव वो मान गए।
यतेति सुतम आदाय ययो आनक दुंदुभिः ना व्यनुनंदत तद्वाक्यम असतो विजात्मनः विज्ञा असतो विजितात्मनः।
तो वसुदेव जब कंस ने इस प्रकार कहा तुम अपने पुत्र को लेके जाओ, वसुदेव को ऐसा नहीं लगा, बहुत खुश नहीं हुए, अच्छा देखो बच गया मेरा पुत्र, कितना अच्छा है कंस, ऐसा नहीं सोचे। क्या सोचने लगे,
तथेति सुतम आदाय ययो आनक दुंदुभिः,
सोचने लगे वसुदेव मेरा नाम है आनक दुंदुभि। आनक दुंदुभि इसलिए कहा गया है क्योंकि मेरा जन्म हुआ था तब देवता लोगों ने बहुत सारे ड्रम्स बजाए थे, इसका अर्थ है भगवान मेरे परिवार में प्रकट होने वाले हैं, भगवान मेरे परिवार में प्रकट होने वाले हैं। तो ये जो कंस का इस प्रकार का जो कार्य है, इस पुत्र को नहीं मारा तो इसके वजह से मुझे खुश नहीं होना चाहिए कि बल्कि दुख होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना कंस इस प्रकार की भावना दिखाएगा, दया की भावना दिखाएगा, मेरे पुत्रों को जितना वो मारने से दूर रहेगा या नहीं मारेगा, उतना भगवान की प्राकट्य का देर होने वाला है। हो सकता है भगवान प्रकट ना हो, क्यों, क्योंकि सोचेंगे वसुदेव तो बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ, भगवान सोचेंगे उनको खुश रहने दो, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा लिया, क्या प्रतिज्ञा लिया, परित्राणाय साधु नाम, अभी मेरे जो साधु है मेरे भक्त वसुदेव अपने बच्चों के साथ खुश है, मेरी आने की क्या जरूरत है। बहुत विचारणीय बात है। तो वसुदेव इस प्रकार सोचने लगे मेरा बच्चा मरा नहीं है और मुझे उससे उत्पन्न होना दुख नहीं हुआ, तो भगवान भक्तों का दुख को निवारण करने के लिए आते हैं, अगर मुझे दुख नहीं होगा तो भगवान नहीं आएंगे। तो इसलिए ये जो अनासक्ति जो अपने बच्चे के प्रति हुआ वसुदेव को, वो अनासक्ति क्यों हुआ, कृष्ण का दर्शन करने की जो लालसा है उसके वजह से हुआ। तो इधर हम हमेशा इस बात के ऊपर सोचते हैं कि हमारा अनासक्ति कैसे हो। अनासक्ति धन है या कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तु, अपने पुत्र परिजन जितने भी लोग हैं, इन सब के प्रति अनासक्ति तभी उत्पन्न होगी जब कृष्ण के प्रति आसक्ति हो। कृष्ण को दर्शन करने की जितना आसक्ति होगी उतना भौतिक चीजों से अनासक्ति होगी। तो ये जो सुख भौतिक चीजों से मिलता है या सुख की उपेक्षा रहता है, उससे अगर संतुष्ट हो जाता है कोई व्यक्ति, उससे कोई सुखी हो जाता है, भगवान सोचते हैं अभी मेरा भक्त है ना वो सुखी है ना, सुखी रहने दो, क्योंकि भगवान भगवद्गीता में परित्राणाय साधु नाम कहा ना। कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि भक्त भगवान जो है हमारे दुखों को निवारण करने के लिए आते हैं, कितना दयालु है, लेकिन ये श्लोक को उच्चारण करके भगवान ने एक बहुत चतुराई किया भक्तों के साथ। क्या चतुराई किया, जब तक तुम दुख में नहीं रहोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा भगवान हमारे दुखों को निवारण करते हैं, लेकिन कृष्ण बड़े चतुर है, साथ ध्यान रखिएगा उनके जो प्रत्येक श्लोक है, प्रत्येक शब्द है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई सीधा सीधा रहता है, कृष्ण का कोई भी चीज सीधा नहीं रहता, सब टेढ़ा रहता है, एवरीथिंग इज क्रूकेड। हाँ, कृष्ण के संबंधित वृंदावन धाम भी टेढ़ा है, उसका गलिया भी टेढ़ा है, वो खड़े भी टेढ़े रहते हैं, उनका छड़ी भी टेढ़ा है, उनका नजर भी टेढ़ा, सब टेढ़ा है, और उनके वाक्य भी टेढ़ा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो कृष्ण कितने दयालु है, परित्राण है साधु नाम, लेकिन ये परित्राण साधु नाम के पीछे कुछ कुछ है रहस्य के। क्या वो रहस्य? जब तक मेरा भक्त दुखी नहीं होता है तब तक मैं नहीं आऊंगा, यानी दूसरे शब्दों में जब तक वो सुखी रहता है तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो वसुदेव विचार करने लगे इस श्लोक में, क्या विचार करने लगे, अभी कंस ने मेरे बच्चे को छोड़ दिया, उसके वजह से मैं सुखी हूं, मेरी बच्चे के साथ पिता को अच्छा लगता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान नहीं आएंगे। तो बाद में कंस विचार करने लगे कि मेरा नाम तो आनकदुंदु भी है, देवता लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, यानी कृष्ण जरूर प्रकट होने वाले हैं, कृष्ण जरूर प्रकट होने वाले के अर्थ क्या है, ये बच्चा मरने वाला है, कंस के हाथ मरने वाला है, अभी कंस ने छोड़ दिया लेकिन कंस इसको मारने वाला है, इसलिए मुझे अभी इसके वजह से बहुत आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कहा गया है न 61वां श्लोक में आनंद न अभय न अब नंद कहा, ये जो अभी जो उन्होंने कहा उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कंस तो एक दुष्ट है, दुष्ट होने के नाते उनका वचन के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। अभी हंसते हुए ने कहा तुम अपने बच्चों को लेके जाओ, लेकिन कल सुबह वापस बुला के इसी को मारेगा। हाँ, ये असुरों का सबसे पहला लक्षण ये है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अभी आपके साथ मित्रता दिखाएंगे और कल सुबह दुश्मनी दिखाएंगे, आज बोलेंगे तो उनको छोड़ दिया, कल सुबह तुमको ही मारेंगे। तो इसलिए वसुदेव कुमार अनंत कंस दुष्ट है, इसलिए उन्होंने कहा कि विजितात्मन, वो कभी भी अपने मन को नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वो निश्चित रूप में असतः उनका जो चरित्र भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कंस का इस बात को सुन के खुश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो भौतिकवादी होते हैं, भौतिकवादियों का जो प्रस्ताव होता है या उनके जो सुरक्षा होता है, उनके द्वारा प्रस्ताव किया गया सुरक्षा हो, उनके द्वारा किया गया वादा हो, उनके द्वारा किया गया दया भी क्यों ना हो, वो सब जो है उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेवर एवर ट्रस्ट ए मेटीरियलिस्टिक पर्सन। ये भौतिकवादी जो हैं, एक कंस जो है एक भौतिकवादी का एक प्रतीक है, वो उनके बातों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जब विश्वास करेंगे तो हमारा ही दुख का कारण है। तो विश्वदेव इस प्रकार सोचने लगे, ये बच्चा को कंस को मारना चाहिए था, नहीं मारा, इसके ऊपर कंस विशेष दया नहीं दिखाया बल्कि वो क्रूरता दिखाया, मेरे बच्चे को नहीं मार के उसने क्रूरता दिखाया, क्यों, ये अगर भी बच्चा मेरे साथ में रहेगा, मैं इस बच्चे के साथ सुखी से रहूंगा तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्यों, आनकदुंद भी भगवान निश्चित रूप से प्रकट होने वाले हैं, वो होने के लिए मुझे दुख का अनुभव करना पड़ेगा, ये दुख का अनुभव करने के लिए कंस को इस बच्चे को मारना होगा, वो निश्चित रूप से मारेगा। अभी वसुदेव इस प्रकार सोचने लगे, अभी जैसे वसुदेव सोच के वापस अपनी जगह जा रहे थे, जहां निवास कर अपने महल में जा रहे थे, क्योंकि अभी कारागार से उनको मुक्त किया गया था, एक महल में रहते थे, वो भी कारागार जैसा ही महल था। कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न है, दो तीन भक्त लोग पूछे, प्रभु जी जब वसुदेव अभी कारागार में थे क्या, तो उसका एक आचार्य जवाब लिखते हैं कि कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया था और एक ऐसे महल में रखा था कि उधर से बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसा कारागार था। तो बाद में जैसे कुछ समय के बाद या दो तीन श्लोक के बाद कोई मालूम पड़ेगा कि वापस कंस ने देवकी और वसुदेव को फिर कारागार में डालकर उनको शैकल्स बांध दिया, उनको ये जो होता है उनको क्या बोलते हैं, हाँ जंजीर, क्या बोलते हैं उसको, जंजीर से बांध दिया, अभी जंजीर से मुक्त वसुदेव वापस उन्होंने बांध दिया। तो और जैसे ये हुआ, अभी 62वां और 63वां श्लोक और आगे वाला 64वां श्लोक, ये तीन श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं किया गया है कि कौन उच्चारण किया, केवल आचार्यगण ये कहते हैं कि ये दो श्लोक हो सकता है कि नारद जी ने कहा होगा या सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा होगा। तो पहले ये देखते हैं कि 62वां श्लोक क्या है और 62वां और 63वां श्लोक क्या है। इसमें सार रूप में कहा गया है, नंदाग ये व्रजे गोपा यश्चाशिनाम च योषितः विष्णयो वसुदेवाध्या देवकाध्य देवक्याध्या यदो स्त्रियः। तो सबसे पहला उन्होंने कहा, तीन जगह के लोगों के वर्णन किया। सबसे पहला नंदादये व्रजे गोपा, नंदादये व्रजे गोपा यानी नंद गोकुल में, नंद महाराज के जो गोकुल में, नंद महाराज जहाँ के राजा थे गोकुल में, उधर के जो लोग हैं नंद महाराज और गोप गोपियाँ, यस चास्पीन च योषिता, योषिता का अर्थ है कि गोपियाँ भी, बाद में वृष्णयो वसुदेवाध्या, वृष्णयो वसुदेवाध्या का अर्थ क्या है, वसुदेव जो है वृष्टि वंश के हैं, तो वृष्टि वंश के जितने भी पुरुष और स्त्रियाँ हैं, और यदुवंश के देवकादयः यदुस्त्रियः, यानी यदुवंश के जितने भी लोग हैं, यानी तीन वंश का वर्णन हुआ है, एक नंद महाराज का, दूसरा वसुदेव के वंश का, और देवकी के जो जितने भी संबंधी हैं, यानी तीन प्रकार के लोग, यदु वृष्णि और नंद आदय, ये तीनों सर्वे, ये श्लोक शुरू होता है। ये सर्वे, सर्वे मतलब कौन है, कौन कौन, किन की वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। सर्वे का शब्द क्या है, सबसे पहला नंदादये व्रजे गोपा यश्चास्पिंच योषिता, सबसे पहला नंद गोकुल में रहने वाले गोप गोपियां, सर्वे का अर्थ ये है। दूसरा वृष्णयो वसुदेवाध्या, जो वसुदेव के जो पूर्वज हुए वो सब जितने भी हैं वो उनको, और तीसरे देवकाध्या यदो स्त्रियः, देवकी के जितने भी पूर्वज हैं वो तीन प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है। ये जो सर्वे शब्द के द्वारा ये सूचित किया जाता है, तीन प्रकार के लोगों को सूचित किया जा रहा है। सर्वे वै देवता प्रायः, अभी देखिए ये सर्वे वै देवता प्रायः, देवता प्रायः का अर्थ क्या है, ये सब जितने भी लोग हैं वो प्रायः देवता है, देवता प्रायः, देवता प्रायः का अर्थ क्या है, उनको ऐसा क्यों नहीं बताया गया ये सब देवता है, देवता प्रायः करके क्यों संबोधित किया गया है, क्योंकि कुछ देवता हैं और कुछ असुर भी हैं, क्योंकि कंस कौन है, असुर है कि नहीं, तो इधर जो देवकी के परिवार में यानी यदुवंश में कंस का भी जन्म हुआ, इसलिए देवता प्राय करके संबोधित किया गया, यानी ऑलमोस्ट सभी देवता थे, एक आध होगा तो असुर है, ऐसा वर्णन है, यानी कुछ शब्दों में ऐसा कहा जाए कि ये कंस के जो साथी थे उसमें भी कुछ देवता थे, कंस के जो साथी थे उसमें भी कुछ देवता थे, और सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत, उभयोरपि भारत, उभयोरपि भारत का अर्थ क्या है, हे भारत उभयोर वसुदेव और नंद महाराज के जितने भी वंशज हैं वो सब, वो भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो, ज्ञातयो बंधु सुहृदो का अर्थ क्या है, ये सब जितने भी हैं बंधु हैं उनके सुहृद थे वो सब, ये च कंसम अनुव्रता, ये च कंसम अनुव्रता, ऐसा लगता है कि कुछ लोग कंस के अनुगामी हैं, वो भी कौन थे, देवता थे। तो ये दो श्लोकों को किसने उच्चारण किया, ये श्लोक अगर लेंगे कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, तो ये श्लोक में एक शब्द आया भारत, ये भारत शब्द सूचित करता है किसको, परीक्षित महाराज को सूचित करता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहा, हे परीक्षित महाराज सुनो हे भारत, कि ये वसुदेव और देवकी के जो वहाँ पूर्वज है या उनके बंधु हैं वो सब कौन है, देवता लोग हैं। क्यों हैं देवता लोग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, वो प्रकट होने की वजह से सारे देवताओं को उन्होंने विशेष सौभाग्य प्रदान किया। क्या सौभाग्य प्रदान किया, उनकी लीलाओं को दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि जब ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ माँ धरती को जब लेके गए क्षीरम तीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तट में, और उन्होंने पुरुषम पुरुष सूक्तेन, पुरुष सूक्त के द्वारा उपास्यता उन्होंने बहुत शुद्धि किया, तब भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में चार बातों को उच्चारण करते, चार चीजें बताते हैं जिसको ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा। सबसे पहला ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा, भगवान की वाणी को उन्होंने ट्रांसफर किया, तो सबसे पहला कहा कि हमारे आने से पहले भगवान को मालूम है कि पृथ्वी माँ की हालत क्या है, इसलिए वो संभविष्यति वो प्रकट होने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भगवान की आज्ञा है कि आप सब लोग जाओ यदु वंश में जाके आप जन्म लो। केवल इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा आपकी पत्नियों को भी भगवान की तत् प्रियार्थम संभविष्यति सुरस्त्रियः। सुरस्त्रियः का अर्थ है कि जो जितने भी देवी देवताओं की जो पत्नियां हैं उनको भी आज्ञा दिया है भगवान ने कि उनको भी प्रकट होना है। तो श्लोक के तात्पर्य में हमने पढ़ा कि भगवान के जो विस्तार होते हैं इधर देवलोक में, उनके जितने भी पत्नियां हैं उन सबको भगवान ने विशेष अनुकंपा दिया, प्रदान किया उनकी लीलाओं में भाग लेने की। तो इसलिए अगर ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को वर्णन किया तो हे भारत, ये जो शब्द परीक्षित महाराज को सूचित करता है, तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं की विशेष सौभाग्य को वर्णन कर रहे हैं ये दो श्लोक में। लेकिन और एक विचार ये है कि ये दो श्लोकों को परीक्षित महाराज को वर्णन नहीं किया, नारद जी ने सुखदेव गोस्वामी, नारद जी ने कंस को बताया। क्यों? नारद जी का प्रसंग इसलिए आता है क्योंकि आप 64वां श्लोक खोएंगे, 64th श्लोक में स्पष्ट रूप में कहा गया वंस ए ग्रेट द ग्रेट सेंट नारद अप्रोच्ड, इधर कहा गया है कि एतत् कंसाय भगवान, एतत् कंसाय भगवान जशना व्यतीयन नारद का वर्णन हुआ है। नारद जी आए और कंस को इस प्रकार कहे, तो इसलिए ये भी सूचित किया जा सकता है कि ये दो श्लोकों को नारद जी ने कंस को कहा। तो वसुदेव अभी इस बच्चे को लेके जा रहे और जैसे इस बच्चे को वापस अपने घर में लेके जा रहे थे तो समय नारद जी को रहा नहीं, नारद जी को रहा नहीं गया, तो नारद जी आए कंस के पास। कंस के पास कैसे आए? नारद जी ने एक कमल का पुष्प लेके आए ऐसा घुमाते हुए। तो कंस ने कहा नारद जी क्या हो गया, आप आए हो, क्या समाचार है? कंस, नारद जी ने कहा बहुत डेंजरस है। तो कंस घबरा गए, तो बताओ। तो नारद जी ने कहा है कमल को दिखाया, बोला तो कि इसमें 8 पंखुड़ियाँ, कितने पंखुड़ियाँ गिनो? तो कंस ने गिना, बोला 8 है। तब नारद जी ने कहा इसमें पहला कौन सा आखिरी कौन सा है? तो कंस ने बोला ये पहला है। गिनते बोला वापस गिनो। तो कंस ने कहा कि ये तो पहला कुछ भी हो सकता है, आठवां भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यही तो बोलने के लिए आए हो। नारद जी ने कहा देखो पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी पहला हो सकता है, दूसरा भी पहला हो सकता है और सातवां भी आठवां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और साथ साथ में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? ये ध्यान रखना कि जो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा था ये भगवान की योजना है। सारे देवता आपके वंश में, आपके सूर्य आपके आजूबाजू में जन्म लेंगे और उनका क्या योजना है? सारे असुरों को मारने का योजना है। तो नारद जी ने कंस को ये दो श्लोकों में कहा, नंद महाराज के या वसुदेव के या देवकी के, तो प्रायः तुम जिसको सोच रहे हो कि ये सब मेरे अनुगामी हैं, ये सब मेरे फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे आजू बाजू में रहने वाले भी हो सकता है कि वो भी देवता है, इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नारद जी ने कंस को कहा। अभी नारद जी इस प्रकार का कार्य क्यों किया? वही डिड। सबसे पहला कारण है नारद जी को बहुत इच्छा थी। क्या इच्छा थी? भगवान का प्राकट्य जल्दी हो। तो भगवान का प्राकट्य जल्दी कब होगा? वो तभी होगा जब कंस अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को परेशान करेगा। ठीक है नहीं। अगर भक्त एकदम आनंद में है, भगवान बोलेंगे आप भी आनंद में रहो, मैं भी आनंद में रहूंगा। अगर आप एकदम बिल्कुल परेशान में हैं, बहुत भक्त लोग बहुत परेशान हैं या बहुत दुखी है, तुरंत भगवान प्रकट होते हैं, ठीक है नहीं। जैसे भगवान नरसिंह की लीला में तो हम देखते हैं भगवान एकदम तुरंत प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज ये नहीं कहा तुम थोड़ा सा रुको बाद में आता हूँ। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि प्रहलाद ने वचन दे दिया था कि भगवान हर जगह है, और वचन गलत सिद्ध हो जाएगा, आतुरता में भगवान प्रकट हुए। यानी कोई भक्त बड़े कष्ट में है तो ये जो भगवान भक्तों का जो कष्ट है ये बहुत अच्छा है। इसके विषय में कुंती महारानी क्या कहते हैं कि विपदसंतुता शाश्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शन। क्योंकि जितना कष्ट का अनुभव होता है उतना जल्दी भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए वसुदेव भी इसी प्रकार चिंतन करने लगे, नारद जी भी वही सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि अगर कंस जितना दुख देगा भक्तों को उतना जल्दी भगवान प्रकट होंगे। और तीसरी बात है, भगवान नारद जी ने इस प्रकार का कार्य क्यों किया? क्योंकि अगर मान लो कि पहली बात तो हुआ था, आपको मालूम है कि कंस जो है देवकी का रथ चला रहा था। जब अगर देवकी का रथ चला रहा था, देवकी का सेवा चल कर रहा था, वसुदेव का सेवा कर रहा था, तो कंस जैसे वसुदेव देवकी का सेवा कर रहा था, भगवान सोचेंगे देखो कितना अच्छा व्यक्ति है कंस, मेरा भक्तों का सेवा कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये जो भौतिकवादियों में असुर में जो दया आती है, वो दया जब भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, भगवान भी सोचते हैं ये अच्छा असुर है, असुर है लेकिन अच्छा है, इसको मारना ठीक नहीं है, ऐसा सोचेंगे। तो इसलिए भगवान ने, नारद जी ने सोचा अभी ये जो कंस वसुदेव का जो पुत्र है कीर्तिमान, उसको माफ करके वसुदेव को भेज दिया है, हो सकता है कि कृष्ण देखेंगे देखो कंस ने मेरे भक्त के ऊपर दया किया है, चलो उसको हम छोड़ देंगे, उनको नहीं मैं नहीं मारूंगा, ऐसा विचार कृष्ण के अंदर आ सकता है। नहीं, ये जो असुर हैं असुरों के अंदर दुष्टता बढ़ना चाहिए, वो जितना दुष्टता बढ़ेगी उतना अपराध करेंगे, और जितना अपराध करेंगे उतना जल्दी कृष्ण आकर उसको मारेंगे। क्या पॉलिसी है ये नारद जी है, नारद थिंकिंग ये दुष्ट है कम से इसको केवल भगवान ही मार सकते हैं, भगवान तभी मारेंगे अपराध करेगा, अभी अपराध करने से बच रहा है, अपराध नहीं कर रहा है। तो नारद जी सोचते हैं ये इसको अपराध में कैसे फंसा हूँ, ओ आई शुड मेक हिम मोर एंड डू मोर एंड ऑफेंसेस। तो ये तीसरा कारण था। तो बाद में चौथा कारण था देवकी और वसुदेव को जो आनंद मिलता, क्या आनंद मिलता? भगवान को दर्शन करने का, उनको प्राप्त करने का जो आनंद मिलता, उस आनंद को देवकी और वसुदेव को प्रदान करना था। और साथ साथ में जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट होंगे तब नारद जी को मालूम था, नारद जी ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया और उस जेल में आए थे और गर्भ में भगवान की स्तुति किए थे। और नारद जी ने सोचा कि सारे जितने भी देवता हैं उनको भी मैं आनंद में डुबाना चाहता हूँ। और इस प्रकार देवकी और वसुदेव को कृष्ण का प्राकट्य को प्रदान करके नारद जी सोचने लगे देवकी और वसुदेव कौन है? भगवान के पार्षद हैं, उन पार्षदों का मैं सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। और साथ साथ में अंततः इन्होंने सोचा वसुदेव और देवकी के मन में एक शंका थी, क्योंकि कंस ने माफ़ कर दिया या बच्चे को लेके जाओ कहा, तो वसुदेव देवकी मन में शंका आया क्या सच में भगवान प्रकट होने वाला कि नहीं। तो ये शंका को दूर करने के लिए नारद जी ने इस प्रकार किया। और अंततः नारद जी कंस के पास जाके ये शब्दों को उच्चारण करने के द्वारा तो कंस का भी पक्ष लिया, यानी कंस का भी फेवर, यानी देखो कंस को नारद जी भी मेरा व्यक्ति है, ही इज ऑल्सो माई पर्सन, ऐसा उनको प्रतीत होने लगा। तो इस प्रकार नारद जी अनेकों अनेकों कारणों की वजह से, खास करके 9 कारण बताए गए, उन कारणों की वजह से ये जो कार्य है उन्होंने किया। जो ऐसा देखा जाए ये कार्य नारद जी का लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कंस बिचारा अच्छा बनने वाला है उसको बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ा भाई? क्योंकि उसके पीछे दिव्य कारण है। कभी कभी भक्त इस प्रकार सोचते हैं, नारद जी या इत्यादि, अगर मान लो कोई दुष्ट है, वो दुष्ट व्यक्ति को और दुष्ट करने में प्रेरित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दुष्टता की हद हो जाती है तब भगवान आते उसको मारते हैं। अगर थोड़ा सा दुष्टता रहेगी भगवान सोचेंगे चलो थोड़ा सा सहन करने दो, लेकिन दुष्टता का हद होना जरूरी है दुष्ट लोगों का। तो इसके पीछे एक बहुत एक प्रसंग है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार के पीछे, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कब होगा? शास्त्र में वर्णन हुआ है वो तभी होगा जब ये सारा जगत एकदम बिल्कुल दीनहीन एकदम बर्बाद हो जाए। अगर कहीं भी थोड़ा सा संस्कृति है, वैदिक संस्कृति अच्छा ही है, तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका कोई काम नहीं है, लेकिन इस जगत पे, इस पृथ्वी पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का तभी सार्थकता होगी जब दीन और हीन जतो छिलो, जितने भी लोग हैं सब दीनहीन हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछते हैं हमारे पास आके, प्रभु जी हमारे पुराने जमाने में वैदिक सभ्यता इतना अच्छा थी, मुसलमानों ने आके उसको बहुत बर्बाद कर दिया, और ये जो अंग्रेजों ने आके बर्बाद किया, ये सब ऐसा क्यों किया? क्या हमारे पास इतना अच्छा वैदिक सभ्यता था तो इन लोगों की वजह से ऐसा क्यों नुकसान हुआ? भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? ये प्रसंग एक बहुत गुह्य प्रसंग है। दक्षिण भारत में एक राजा है, एक राजा थे जिसका नाम था स्वाति तिरुनाल। आप सबने सुना भी सबसे अमीर मंदिर कौन सा है पूरा विश्व में? हाँ, पद्मनाभ स्वामी, वो मंदिर के वो राजा थे। उन्हीं के समय में ये सब बहुत सारे धन सामग्री इकट्ठा करके रखा गया, और ये अंग्रेजों को मालूम पड़ा कि उनके पास बहुत सारा संपत्ति है, भगवान का इनका संपत्ति लूटने के लिए आए थे। तो स्वाति नारायण को मालूम था कि ये सब आए हैं मित्रता बनाने के लिए आए हैं। उस समय के गवर्नमेंट जनरल था वो आके, तो उनने कहा कि हम आपसे मित्रता बनाना चाहते। एक राजा अगर कोई मित्रता का प्रस्ताव रखता है तो दूसरा राजा का कर्तव्य बनता है उस मित्रता को स्वीकार करना। और ये गवर्नर जनरल था, उनका नाम मैं भूल गया, तो उनको किसी ने कहा आप ये स्वातंत्रनाल ये राज्य को, चेरा जो राज्य है उसके ऊपर कभी भी आप आक्रमण नहीं कर सकते हो जब तक उनके पास कुछ कमांडोस थे। स्वातंत्रनाल के पास, ये राजा के पास, वो कमांडोस का नाम था, वो जो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थे, जैसे होता है ना कराटे वगैरह होता है ना, उसका जो मूल जो ग्रंथ है उसको कलरी आर्ट बोलते हैं, कलरी, ये केरला में अभी भी प्रसिद्ध है। वो कलरी से ही वो सब बाकी सब जितने भी बनाए, वो कराटे कुंफू सब जितने भी बनाए। तो उसके 12 बड़े बड़े योद्धा थे जो हवा में गायब हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, जब तक ये लोग हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये गवर्नर जनरल था, तो उनको मालूम पड़ा कि बहुत शक्तिशाली है, हम लोग कितना ही बंदूक चलाएं कुछ भी करेंगे इसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं नहीं कर सकते, इससे उनके साथ मित्रता करेंगे। तो हमने मित्रता का प्रस्ताव दिया। स्वातंत्रनाल को मालूम था ये जो मित्रता जो है ये केवल नाटक मात्र है, अस्तित्व का विचार क्या है हमारे ऊपर आक्रमण करना, फिर भी मित्रता का प्रस्ताव रखा है, धर्म बनता है कि उनको मित्रता का स्वीकार करना, और उनको निमंत्रण दिया। निमंत्रण देके उनको ये जो कलरी आर्ट जो है वो 12 लोगों को उन्होंने बुलाया कि आर्ट फॉर्म दिखाया है, कभी कोई इधर कूद जाता उधर कूद जाता है सब होता है ना। कोई तब ये जो गवर्नर जनरल थे बहुत खुश हो गया, खुश हो के उन्हें कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। स्वातंत्रनाल ने उन सबको बुलाया, बुला के कहा देखो इनसे मिलिए, और जैसे 12 लोग सामने खड़े थे तो ये गवर्नर जनरल ने बंदूक लेके 12 लोगों को मार दिया, और पीछे कुछ लोग छुपे हुए थे उनके सेना, और उन्होंने ये स्वातंत्रनाल को बंदी बनाया और राज्य के आक्रमण किया। तब स्वातंत्रनाल अपने एक पोएम, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गीत लिखे, उनमें से एक गीत में उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, ये आप होते हुए भी ये वैदिक सभ्यता का जो भ्रष्ट हो क्यों रहा है? क्या आप उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है? तो भगवान ने उनको कहा उस समय कि इसके पीछे मेरा कुछ योजना है, इसके पीछे मेरा कुछ योजना है। क्या योजना है? जब तक पूरा समाज एकदम बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हो जाएगा तब तक इस कलयुग में मैं नहीं आ सकता हूं। यानी मेरा जो कलयुग का जो अवतार का प्रचार किन लोगों को होगा? एकदम बिल्कुल गए गुजरे लोगों को होगा। जब तक समाज एकदम बिल्कुल गया गुजरा नहीं होगा तब तक चैतन्य महाप्रभु का प्रचार नहीं हो पाएगा। आप देखिए इस भारत में अभी भी थोड़ा सा वैदिक सभ्यता कहीं इधर उधर बचा हुआ है। उधर जाके आप हरिनाम संकीर्तन करके लोगों को कृष्ण नाम हरिनाम देने के लिए जाओगे तो लोग सोचेंगे ठीक है आप भी अच्छे हो हम भी अच्छे हैं, आप जहाँ उधर रहो हम जहाँ उधर है अच्छे। लेकिन आज एकदम बिल्कुल जो है जहाँ एकदम नशा करते एकदम बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं उनके पास जाके आप प्रचार करो, बोलेंगे एकदम हम गए गुजरे हैं फिर हम आपके साथ जुड़ जाते। यानी एक व्यक्ति का उद्धार तभी होगा तो एकदम बिल्कुल गए गुजरा होगा कि नहीं, तो एकदम दुख को अनुभव करेगा। अगर थोड़ा सा भी वो भौतिक सुख में है वो कभी भी चैतन्य महाप्रभु आंदोलन को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्या सोचेगा? आदर देगा, बोले आप बहुत अच्छे हैं ठीक है अब मैं लाइफ में बन जाता हूँ सब कुछ करता हूँ लेकिन मैं आपके साथ जुड़ूंगा नहीं। क्यों? मेरे पास अभी भी सुख है, एकदम खत्म हो जाएगा तब आऊंगा आपके पास। तो इसलिए भगवान तब तक इंतजार करते जब तक एकदम बिल्कुल एकदम बर्बाद हो जाए। तो भक्त चाहते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है या हम बोलेंगे आप आइए मंदिर में आइए, सुनता नहीं, आता है कभी अपनी मर्जी से आता जाता है। तो आप उनसे पूछें आप कैसे हैं, बोलो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं फर्स्ट क्लास है तो मैं चाहता हूँ तुम दुखी हो जाए क्योंकि तभी तुम आओगे इधर। तो इस प्रकार का विचार बहुत अच्छा है। तो नारद जी ने प्रस्ताव रखा, नारद जी के अनुगामी होने के नाते कभी कभी भक्त सोचते हैं जब ये दुखी होगा ना तब आएगा, चलो When he becomes miserable, then he will come. अभी ये टाइम की समय की बात है, और दुखी हो जाओ बेटा। अच्छा एक्सीडेंट हो गया और देख पैर गया दूसरा पैर भी जाने तब आएगा। लेकिन बाहर से हम ये नहीं दिखाते, बाहर से बोलते बोलते नहीं है, बाहर से ऐसा हो गया वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना होता क्या है? और दुखी हो जाए। तो व्यक्ति आके कहता है ओ जी मैं बहुत दुखी हूँ, अगर आपके पास कोई आके कहता है ना आपको बोलना चाहिए बहुत अच्छा। तो क्यों? क्योंकि अगर जब दुखी हो और दुख का अनुभव करोगे तभी भगवान या भगवान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान को प्रकट होना है भक्ति का प्राकट्य होना दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर कोई भक्त किसी को आशा करता है कि ये और बर्बाद हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भक्त इस प्रकार प्रार्थना करता है तुम और बर्बाद हो जाओ, क्यों? उसका उद्धार के लिए। क्योंकि अगर कंस थोड़ा सा अच्छापन दिखाता, कंस दुष्टपन को करता, सारे भक्त लोग भी थोड़ा दुखी रहते हैं और साथ साथ में वो मरता भी नहीं और उसको उद्धार भी नहीं होता है। नारद मुनि ने इस प्रकार का चाल चलाया। तो नारद मुनि का इस प्रकार का जो श्लोक है कंस को बताना ताकि उनको प्रोत्साहन करना नहीं तो वसुदेव के पुत्र को मारो, इनके पीछे बहुत बहुत सारे कारण हैं, केवल आचार्यगण बात उनको समझा सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नहीं क्वेश्चंस? हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात है, भारता। भारता जो शब्द है ये जब नारद जी ने संबोधित किया कंस को, कंस को कहा तुम भारत हो। क्यों भारत हो? भारत भा प्लस रता, ये भा का दो अर्थ होता है, एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, भा शब्द का, भा मीन्स लाइट ज्योति प्रकाश, दूसरा भा का अर्थ है भार, कोई भारी वस्तु यानी मन के ऊपर जो भार होता है वो तमोगुण होता है। तमोगुण की जो इच्छाएं होती हैं उसको भार कहा जाता है। मैंने बोला कि मेरे ऊपर सर के ऊपर बहुत भार है। क्या भार है? इच्छाओं की वजह से भार है। जिसके पास इच्छाएं नहीं होती एकदम हंसते खिलते रह जाएगा, आराम से रहेगा। जिसके पास बहुत सारी इच्छा होती हैं वो हमेशा चिंता में रहेगा, तो बहुत भार रहेगा उसके सर के ऊपर। हाँ, तो ये जो भार जो है इसको शास्त्र में कहा गया तमोगुण से उत्पन्न हुए इच्छाएं, तमोगुण से उत्पन्न हुए इच्छाओं को भार भाग कहा गया है। रता का अर्थ क्या है? जो संपूर्ण रूप में मग्न हो गया है। तो ये भारत का और एक शब्द है। जब नारद जी ने कंस को कहा हे भारत, कंस खुश हो रहा है, हाँ हाँ मैं भारत वंश का हूँ। लेकिन असल में नारद जी का उद्देश्य क्या था भारत शब्द बोलने के पीछे? जो तमोगुण के इच्छाओं में मग्न हो जो तुम्हारा ही नाश का कारण बनेगा। एक बात है, ठीक है। हरे कृष्ण, एनी क्वेश्चंस? ग्रंथराश्रीमद भागवतम की शील प्रभुपाद की जय।
बोलता हूँ डायमंड आपके क्लास में।